Krishna, 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 Hare Hare. सूत्र गोस्वामी शोभकादि विषयों से कहते हैं कि वेदव्यास जी ने जब नारद जी के जन्म और कर्म के विषय में सुना तो आधुनिक बात सुने, तब आधे ही आधे में ही नारद जी ने रोक दिए ये जानने के लिए कि ये वेदव्यास जी को आगे जाने की इच्छा होगी। तो वेदव्यास जी पूछते हैं कि नारद जी, आपको ज्ञानोपदेश देने वाले जब वो महात्मा गण थे, वे जब चले गए तब आपने क्या किया? वे पूछते हैं कि आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और आपका ये जो शरीर है ये कब छूटा और आपको ये पार्श्वतत्व शरीर है कैसे मिला? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये जो स्मृति आपको है, आप अभी देवर्षि नारद के शरीर में है, आपको पूरे जन्म की स्मृति कैसे रही है? इस गुण रहस्य को जरा हमें समझना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तो नारद जी कहते हैं मुझे ज्ञानोपदेश देने वाले महात्मा लोग जब चले गए तब उनके जाने के बाद मैं तो छोटा सा बालक था, मेरे पिताजी तो थे नहीं, मैं ब्राह्मण की बस्ती में रहता था और अपने माता पर आश्रित था। तो माता पर आश्रित होने के बाद माता मेरे लालन पालन का बड़ा ख्याल रखती थी, हमेशा गरीब थी बेचारी, ब्राह्मणों के घर में काम करके जो भी छोटा मोटा काम करके मेरा लालन पालन करती थी और बहुत आसक्त थी मुझसे, बहुत ज्यादा आसक्त थी और मैं भी बहुत ज्यादा आसक्त था उससे। तो मेरे लालन पालन में चाहती तो थी वो कि मेरा बहुत कुछ करे मेरे लिए, लेकिन गरीबी के कारण हालात के कारण वो बेचारे कुछ नहीं कर पाती थी। तो इसी चिंता में मेरी माँ हमेशा रहती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरी माँ गाय धोने के लिए जा रही थी, गाय का जो दूध धोने के लिए निकालने जा रही थी और उस समय अचानक से उसे एक सांप ने डस दिया। अब मेरे जैसे व्यक्ति छोटा सा बालक था, इसका ना कोई मेरे माँ के अलावा मेरा कोई नहीं था और मुझे कोई दिशा का ज्ञान नहीं था कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है। ब्राह्मणों की बस्ती में मेरा क्या काम था, मेरी माँ ही वहां पे नहीं रही तो ब्राह्मणों की बस्ती में मेरा क्या काम था? तो ऐसे नारद जी बोल रहे थे, मैं छोटा सा बालक था, मेरी माँ गुजरने के बाद जो साधुओं के मुख से मैंने जो भगवान के विषय में सुना था मुझे वह स्मरण आ गया और मैंने ये विचार किया ये जो मेरे जीवन में घटना हुई है निश्चित रूप से भगवान की कृपा से हुई है। भगवान चाहते हैं कि मैं उनकी प्राप्ति करने के हेतु निकल जाऊं और उसी वजह से भगवान ने व्यवस्था की है कि मेरी माँ जिसमें मेरी आसक्ति थी या उसकी आसक्ति मुझमें थी, वो मेरा जो संसार बंधन आत्मिक बंधन था वो भी कट जाए ताकि मेरे जीवन में मात्र एक ही धैर्य है, श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना। और ऐसा छोटा सा बालक मैं जब मेरी माँ गुजर गई तब मैंने उत्तर दिशा की ओर जाना प्रारंभ किया। ना मुझे कोई रास्ता पता था कि कैसे जाना है क्या करना है, ना मुझे आजकल तो गूगल मैप है, कहीं भी जाना होगा तो गूगल मैप पे डेस्टिनेशन डाल दो, डिस्टेंस पता चल जाएगा, ट्रैफिक कितना है पता चल, सब पता चल जाता है। छोटा सा बालक बोलने की मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस मालूम था कि उत्तर दिशा की तरफ मुझे जाना है, बद्रिक आश्रम की तरफ, तो उनका वही उद्देश्य होगा वही उसी तरफ जाने की। तो मैं जब रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में मुझे घन धान्य से संपन्न कई सारे बड़े बड़े नगर दिखे। देखिए पिछले कल की बात है, शायद कलयुग का ही घटना है। तो धन धाने संपन्न मुझे बड़े बड़े देश दिखे, नगर दिखे, गांव दिखे, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां दिखी, सोने चांदी के बड़े बड़े खाने दिखी और ऐसी जो दिव्य अलौकिक वो जो क्या कहते हैं जो ग्रह ग्रह खड़े रहते हैं ना, क्या बोलते हैं आप उसे, हाँ, उसके बड़े बड़े पहाड़ उन्होंने देखे, उन पत्थर होंगे स्टोन्स के बड़े बड़े पहाड़ उन्होंने देखे। तो छोटा सा बालक ये सारे नजारे देखते हुए शहरों की तरफ से गुजरते हुए ये कहीं भी आसक्त नहीं हुआ। छोटा सा बालक था, हो सकता था कि गार्डन दिख जाए थोड़ा झूल लेता, थोड़े बच्चे के क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट खेल रहा था उनके साथ। लेकिन नारद जी कह रहे कि मुझे इन सब चीजों से प्रभावित बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे देख लिया था उन साधुओं की कृपा से, मेरे निश्चय कर लिया था कि मुझे श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करनी ही है, और उसी उद्देश्य से निकल गया था, और इसलिए ये मुझे क्या सही है क्या गलत है उसका मुझे ज्ञान हो गया था, इसलिए मैं ये सारे बड़े बड़े संसार के
थोड़ा एक को ज्यादा हो गया
संसारिक लोगों को प्रभावित करने वाले जो ये पदार्थ है उनसे मैं प्रभावित होते हुए भी निकल पड़ा। मैं अकेला था, इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैं गहरे जंगल में पहुंचा, और उस गहरे जंगल में मैं थका हुआ था, भूख भी बहुत लगी थी, और गहरे जंगल में मैंने देखा कि वहां पे सांप सियार शेर इत्यादि बड़े बड़े जंगली खतरनाक जीव वहां पर रहते हैं, और इस स्थिति में भी मुझे भय नहीं लग रहा था, मैं भय रहित था। मुझे इस बात का ज्ञान था कि सबके हृदय में भगवान रहते हैं, और जब तक वे नहीं चाहेंगे तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। हमारे अंदर भय तब तक रहता है क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि सांप है शेर है जितना मार देंगे हमें। जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है कि भाई उसके हृदय में भगवान रहते हैं, और जब तक तो वो नहीं चाहेंगे पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो वहां से हिल भी नहीं सकता। तो पहले के जमाने में जो राजा लोग थे साधु लोग थे, जब वो वन में घूमते थे तो वो भगवान की कृपा पर पूरा भरोसा रखते निकलते थे, उनको विश्वास होता था कि भगवान हमें रक्षा करेंगे। आज हम लोगों में इतनी हिम्मत है नहीं कि एक रात जंगल में बिता के आ जाए, सांपों से शेर से इससे उससे दुनिया भर का भय रहेगा। लेकिन इस छोटे से बालक में इस तरह का भय नहीं था, उसको साधु की कृपा से संपूर्ण ज्ञान था कि सबके हृदय में भगवान का वास है। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शीतल हो गई थी, मुझे बड़े जोर की प्यास भी लगी थी, इसलिए वहां पर मैंने एक सरोवर में जो वहां पर एक सरोवर था वहां पर पीपल का पेड़ था, तो मैंने वहां पर स्नान किया, आचमन किया, और वहां पर आसन लगाकर एक जगह आसन लगाकर मैं पीपल के पेड़ के पास बैठ गया। और जैसे मुझे साधुओं ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया था, ठीक उसी तरह से मैंने उसी स्वरूप का स्मरण करते हुए मैंने अपना चित्त उस पर लगाया, वर्णन कर दिया। जैसे ऐसा मुझे उपदेश दिया तो भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान मोरपंख धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ये सारा जो वर्णन मुझे साधु ने किया था, ट्रेनिंग दी थी, ध्यान लगाने की ट्रेनिंग भी दी थी उनको, तो वो उन्होंने अपना चित्त लगाना प्रारंभ कर दिया। और भक्ति भाव से मेरे हृदय में भक्ति का प्रेम था, श्री कृष्ण श्री साधु की कृपा से मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, और उस प्रेम के वशीभूत होकर जब मेरे अंदर लालसा हुई कि श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा हुई, तो मेरे हृदय में जो प्रेम उदित हुआ था उनके लिए, उसके वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हो गए, और मैं उन्हें देख पा रहा था। नारद जी कह रहे कि छोटा सा बालक था 5 साल का, लेकिन भगवान को हृदय में आत्मसात, भगवान का साक्षात्कार कर लिया उसने। भगवान का वो अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला था, और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। और अचानक से जब भगवान ने मुझे कुछ समय के लिए दर्शन दिया, तो अचानक भगवान अंतर्धान अंतर्धित हो गए, और मैं एकदम विचलित होकर खड़ा हो गया, अरे ये कैसे हो गया। मैंने प्रयास किया कि दोबारा अपना मन और हृदय को एकत्रित करते हुए भगवान को फिर से पकड़ सकूं। लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं थी। भगवान है ना, वो हमारे इंद्रियों के विषय नहीं है। हम भगवान को नहीं पकड़ सकते। हम यदि ये सोचे कि हम लोग हमारे इंद्रियों के बल पर श्री भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो ये संभव नहीं हो सकता। भगवान कृपा करके हमारे मन में आ जाते हैं तब हम उनको कुछ ग्रहण कर सकते, समझ सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि अंत में भगवान का स्मरण करना, तो हम लोग भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। भगवान अंत में यदि हम लोग सिंसियर है, ऑनेस्ट है, प्रामाणिक है और भक्ति की है अच्छे से, तो भगवान कृपा करके, अब हम पर कृपा करके भगवान अपने से हमारे मन में आ जाएंगे। इस भूल नहीं रहना चाहिए कि हम भगवान को पकड़ लेंगे। जो भगवान को पकड़ने का प्रयास करता है उससे भगवान कोसों करोड़ों मील दूर रहता है। इसलिए हमें अपने प्रेम में भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान स्वयं हमारे मन में अवतरित होंगे। वसुदेव जी के मन में भगवान प्रकट हुए थे। जैसे मैंने सुबह बताया कि गुरु ट्रांसफर करते हैं शिष्य को मन के माध्यम से, तो गुरु की साधुओं की कृपा से हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं। मैंने उस स्वरूप का दर्शन दोबारा करना चाहा, लेकिन वो जो दर्शन था वो मुझे दोबारा नहीं हुआ। और इस निर्जन भवन में मुझे जब भगवान के दर्शन नहीं हुए दोबारा, तब मैं तड़प रहा था। और मेरी इस तड़प को देखते हुए जो वाणी के विषय नहीं है, प्राकृत वाणी के विषय नहीं है, अर्थात जो अप्राकृत है, ऐसे श्री भगवान मुझसे कुछ कहे। श्री भगवान क्या कहते हैं नारद जी से? खेद है बालक, खेद है कि इस जन्म में तुम्हें मेरे दोबारा दर्शन नहीं होंगे। क्यों प्रभु? क्योंकि जो अदब अचरे लोग होते हैं ना, जो अब तक भक्ति में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं, उन अदब अचरे लोगों को मेरा दर्शन नहीं हो सकता। जिसके हृदय में संसार को भोगने की तो कामना है, उन लोगों को मेरा दर्शन कभी नहीं हो सकता। तब प्रभु फिर मेरा क्या होगा? मुझे आपके दोबारा दर्शन कैसे होंगे? और आपने फिर मुझे अभी दर्शन क्यों दिए? अगर आप जानते हैं कि मैं भक्त जी हूं तो फिर मुझे क्यों दर्शन दिए? क्योंकि तुम निष्पाप बालक, तुम्हारे अंदर मुझे प्राप्त करने की लालसा को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए, ताकि मेरा वो स्वरूप तुम एक बार देख लो। भगवान के साक्षात दर्शन जिसने एक बार कर लिए, बस वो कुछ नहीं करना, वो कुछ देखना ही नहीं चाहेगा, उसे और संसार को देखने की लालसा ही नहीं बचेगी। विद्वान ठाकुर ने भगवान के दर्शन कर लिए, उनकी तो वो तो अंधे थे, लेकिन उनको भगवान के दर्शन कर लिए, तो वे कहते हैं उनसे कि दोबारा अंधा ही बना दीजिए मुझे, कि मुझे आपके अलावा और कुछ देखने की लालसा नहीं है, मुझे बस आपके ही दर्शन करने हैं। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे 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 जिसके हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा रहती है ना, लालसा, उसको धीरे धीरे हृदय की वो लालसा ही उसके संसार बंधन को काट देती है। उसके अंदर जो संसार को भगवने की जो कामना है उसको नष्ट कर देती है। बस मेरी मुझे प्राप्त करने की लालसा को बढ़ाना पड़ेगा। जैसी वो लालसा बढ़ेगी तो संसार को भगवने की लालसा अपने आप कम हो जाएगी। संसारिक विषयों में अरुचि और भगवत कथा सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन कब? जब श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने की लालसा हृदय में उदित होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले तो भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु मुझे आपके चरण कमलों में प्रेम भक्ति चाहिए, मुझे आपके चरण कमलों को प्राप्त करना है। ये प्रार्थना हृदय में होनी चाहिए। ये प्रार्थना करेंगे तो लालसा बढ़ेगी, जिस तरह से अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती है, उसी तरह से या लता लता में अगर ठीक से खर पानी डाला जाए तो लता बढ़ती जाती है। श्रवण कीर्तन जल कराये सेचन, तो श्रवण कीर्तन से जल से ये जो लता है, ये जो लालसा है, इसको बढ़ाना चाहिए। और प्लस हृदय में प्रार्थना भी होनी चाहिए कि भगवान मुझे आपके चरण में प्राप्ति करनी है। तो ये लालसा जब हृदय में रहेगी एकमात्र, तो धीरे धीरे करके विषयों में जो हमारी आसक्ति है वो खत्म हो जाएगी, अन्यथा नहीं हो सकती। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी भी नहीं टूटेगा, यह आश्वासन भगवान दे रहे हैं नारद को कि तुम चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा यह उत्साह और मुझे प्राप्त करने की जो लालसा है बनी रहेगी, बढ़ती जाएगी। भगवान कहते हैं कि नारद तुम्हारी जो स्थिति हुई है ना, वो किस कारण हुई जानते हो? तुमने थोड़े समय में जो साधुओं की सेवा की और उनको प्रसन्न किया है ना, उसी का कृपा प्रसाद है कि आज तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, तुमसे मैं बात कर रहा हूं। अल्पकालीन सेवा, एक 5 साल के बच्चे ने थोड़े समय के लिए, 4 महीने के लिए साधुओं की सेवा कर ली, उनको प्रसन्न कर लिया और उसका फल स्वरूप था कि आज भगवान उनके सामने खड़े हैं। ध्रुव महाराज भी ऐसी लालसा बोले के घर से निकले थे, जब उनकी मां ने उनको फटकार कर निकाल दिया तो ध्रुव महाराज ने यही लालसा बोली, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, कहां रहते हैं वो? तो उनकी माता ने कहा वो जंगल वन में रहते हैं, तो निकल पड़े कि मुझे श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। किस इच्छा से निकले थे वो बात अलग, लेकिन मुझे भगवान को प्राप्त करना है, पहले नारायण से पहले मिल लूं, बाकी के हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, पहले तो पहले दर्शन कर लें। तो इस लालसा को लेकर निकल पड़े थे और नारायण जी आए परीक्षा लेने के लिए। नारायण जी पूछते क्या बात है महाराज, उत्तान पात तुझे गोद में बैठने नहीं दे रहे ना, चल मेरे साथ गोद में के तुझे सर को बिठा देंगे, मेरी बात को वो टाल नहीं सकते, चल चल। छोटा सा बालक कहता है नारद जी आपके बड़े बड़े शिष्य हैं और सबको भगवान के धाम भेजा है, सबको महाभाव है, सबको भगवान के अपने भी भक्त बना के अपने उनके भगवान के धाम भेज दिया है, मुझे मेरे साथ ही कपट कर रहे हैं। देखिए इस बात को तुम सही तरह से जान लीजिए, अगर नारायण को प्राप्त करने में सहायता करनी है तब तो बात कीजिए, नहीं तो आप चले जाइए ऐसे, मेरी माँ ने मुझे बोला वन में है तो मैं ढूंढ लूंगा उनको अपनी तरीके से। तो नारद जी बोले धन्य है भाई, 5 साल का लड़का ध्रुव और इस तरह से बातें कर रहा है। तो नारद जी ने कहा ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कर, पहले तो वृंदावन जा, वहां पे यमुना में स्नान कर और वहां पे मधुवन में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर और 6 महीने के अंदर मेरी कृपा से भगवान के सामने खड़े होंगे। जब ध्रुव को इस तरह से उपदेश दिया तो भगवान चले गए। नारद उत्तान पाद जी के पास पहले जाते हैं, उसके बाद नारद वैकुंठ चले जाते हैं। यहाँ पर 6 महीने जब समाप्त होने के लिए आते हैं तो 2 टीकाएं हैं इसमें आचार्य ने, एक तो प्रसंग ऐसा है कि देवता लोग जाते हैं, भागवत में ऐसा बना नहीं कि देवता लोग जाते हैं कि ध्रुव की वजह से सारे संसार में हाहाकार मच जाता है, ध्रुव सांस रोक देते हैं तो सारे संसार की सांस रुक जाती है, सारे देवता लोग मरने की सिचुएशन में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में देवता लोग भगवान के पास आते हैं। लेकिन कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि नारद जी भगवान के पास जाते हैं, तो नारद जी भगवान से कहते हैं कि मेरा एक डिसाइपल है, शीघ्र जाइए और उसको दर्शन दीजिए। तो कौन है? तो आपको भली बातें जानता है, उत्तान पात का पुत्र ध्रुव, उसको जाइए और दर्शन दीजिए। तो इस तरह से सेटिंग साधुओं की कृपा से साधु भगवान को फोर्स करते हैं कि जाओ और मेरे कृपा पात्र को दर्शन करो। जब धन कुबेर मणिग्री का उद्धार हुआ था ना, तो भगवान कह रहे थे कि आप लोगों पर कृपा नारद जी की वजह से मैंने तुम लोगों को दर्शन दिया और तुम्हारे साथ ये लीला की है, नारद जी की वजह से। तो इस तरह से साधुओं को प्रसन्न करने से हमें भगवान शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त होंगे, अन्यथा भगवान को प्राप्त करने का उपाय नहीं है। व्यास जी इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। और कुछ समय बाद मैं तो ऐसे स्वच्छंद विचरण करता था जैसे भगवान ने मुझे विश्वास दिला दिया कि मेरा फॉल्डर होने वाला नहीं है, मेरा आप मुझे कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इतने विश्वास के साथ भगवान का प्रचार करने के लिए निकल गया और पृथ्वी में सब जगह घूम रहा था, केवल श्री कृष्ण का प्रचार करने हैं, तो स्वच्छंदता से घूम रहा था, मुझे किसी भी चीज का भय नहीं था। मैं बस भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गाते हुए संसार में विचरण कर रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब मेरा ये शरीर समाप्त हो जाएगा। नारद जी को भगवान ने कहा था कि जब ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा उसके बाद तुम्हें मेरे पार्षद का शरीर प्राप्त होगा। ये शरीर छूटने के पश्चात तुम्हें पार्षद मेरा पार्षद तो प्राप्त होगा। तो नारद जी इंतजार करने लगे कब मेरा समय आएगा। तो वो समय भगवान की कृपा से आ गया। नारद जी वेदव्यास से कहते हैं कि समय बीता, मैंने अपना अधिक से अधिक समय भगवान के प्रचार में बिताया, इंतजार करते करते वो समय आ गया जब मेरा ये पंच भौतिक शरीर का नाश हो गया, शरीर नष्ट हो गया और मुझे पार्षद का शरीर मिलने वाला था। अब यहां पर एक सिद्धांत हमें समझना चाहिए। कई सारे लोगों की धारणा होती है कि जीव वैकुंठ से आया है, धारणा होती है कि जीव वैकुंठ से आया है, लेकिन और तरह तरह के इस पर चर्चाएं चलते रहते कि अगर जीव वैकुंठ से आया है और वैकुंठ जाकर भी यही आना है तो हरे कृष्णा हम लोग क्यों जप रहे हैं, है कि नहीं? अगर लोगों को इस तरह की धारणा है कि जीव वैकुंठ से गिरा है तो भाई जीव यदि वैकुंठ से गिरा है वैकुंठ से भी लोग गिरते हैं। इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी को सिद्धांत समझाते हैं। इस माया अभी कुछ माया आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत इसके बीच में एक विरेजन नदी है। माया का जो प्रभाव है वो केवल और केवल उस विरेजन नदी तक है। विरेजन नदी के पार आध्यात्मिक जगत चालू हो जाता है। तो माया का प्रभाव उस जगत में नहीं है, उसकी रेंज ही वहां पर नहीं है। माया भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी है, आध्यात्मिक जगत की नहीं। आध्यात्मिक जगत के अधिष्ठात्री देवी अंतर्गत शक्ति भगवान की शक्ति श्रीमती राधा रानी है। जब माया का वहां पर प्रवेश ही नहीं है तो वहां से जीव कैसे गिरेगा। यहां पर नारद जी बता रहे हैं कि मेरा जो पंचभौतिक शरीर है ये नष्ट हो गया और मुझे पार्षद शरीर मिला, अर्थात भगवान के जो पार्षद होते हैं उनका शरीर भगवान जैसे ही दिव्य अलौकिक होता है, प्राकृत नहीं होता। जैसे एक मछली है पानी में है, क्या वो मछली बाहर रह सकती है, मर जाएगी। उसके स्वभाव अनुसार उसके कर्मानुसार उसको वो नदी में तैरने के लिए उसको शरीर मिला हुआ है। ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर होता है, भौतिक शरीर से कोई वहां पर जा नहीं सकता, यहां पर यह शरीर छोड़ना ही पड़ता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है जब शरीर इतना दिव्य बन जाता है कि उसी शरीर से लोग चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जगत में जाकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पूरी तरह से स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। तो ये हमें जानना, ये हमें समझना चाहिए कि वहां पर माया का कोई प्रभाव ही नहीं है। ये माया शरीर जो है, माया के पंच तत्वों से जो बना शरीर है, ये वहां पर नहीं होता। वहां पर जैसे भगवान का शरीर होता है, भगवान के जो राधा रानी या अन्य जो भगवान के दिव्य परिकर है, उनका जैसा दिव्य शरीर होता है, वैसा है शरीर एक जीव को प्राप्त होता है। तो वहां से गिरने का कैसे सवाल उठ सकता है? अरे इस भौतिक जगत में जीव यदि कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेता है, इस भौतिक जगत में माया उसको छू नहीं सकती, भौतिक जगत में नहीं छू सकती उसको। तो आध्यात्मिक जगत से नीचे गिराने की तो बात ही नहीं है। तो यहां पर स्पष्ट होता है कि नारायण जी कहते हैं कि मुझे पार्षद का शरीर मिलता है, अर्थात वहां का जो शरीर है वो अलौकिक है, यहां के जैसा नहीं है। एक नारायण जी कहते हैं कि मुझे जो ब्रह्मा जी का एक कल्प जब ब्रह्मा जी का बीत गया, उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने सारे सृष्टि को वाइंड अप किया और भगवान नारायण के अंदर प्रवेश करने वाले थे। उसी समय मैं भी उनके साथ भगवान नारायण में प्रवेश कर गया। और जब एक सहस्र चतुर्युग बीतने के बाद जब ब्रह्मा जी का फिर से सृष्टि करने का समय हो गया, तब मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया, लेकिन मैं इस समय पार्षद का शरीर, भगवान के धाम में जैसे भक्तों का शरीर होता है, वैसे अलौकिक दिव्य शरीर के साथ मैं नारद बन के आया हूं तुम्हारे सामने। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि तीनों जगत में मैं घूम सकता हूं। मैं इसी शरीर के साथ कहीं भी जा सकता हूं, किसी भी स्थान पर, भगवान की वृंदावन लीला में कहो, द्वारका लीला में कहो, मथुरा लीला में कहो, किसी भी स्थान पर मुझे जाने के परमिशन है और मुझे कोई रोक टोक नहीं है। देवताओं में किसी भी लोक में मुझे अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं जानता हूं और लोग सारे लोग मैं खड़े होने के लिए मेरा स्वागत करते हैं, सारे देवता लोग। कितनी बड़ी मीटिंग क्यों नहीं चल रही हो, नारायण जी जाते हैं, सब लोग खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं। जब इंद्र प्रहलाद की माता कयाधु को जब लेकर जा रहा था, तब नारायण जी ने आकर रोक दिया, बोले इंद्र बहुत बड़ा बेवकूफ है तू, हिरण्यकश्यप का एक पुत्र असुर नहीं है, महाभारत भक्त प्रहलाद है, तू क्या सारे देवता मिलकर भी इसको कुछ नहीं फाड़ सकते, इसलिए इसको छोड़ दे, इसकी परिक्रमा कर और अपने रास्ते निकल जा। तो इंद्र जिसने निर्णय लिया था कि इसके पुत्र का वध करना है, नारद की बात मानकर अपना निर्णय बदल दिया, परिक्रमा करके उसी जिसको किडनैप किया था उसकी परिक्रमा कर लिया और चला गया। तो ऐसे दिव्य नारद जी है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं बिना रोक ठोक के विचरण करता रहता हूं और भगवान के द्वारा ये जो मुझे बिना मिली हुई है ना, उस बिना पे मैं 24 घंटा हमेशा सदैव नित्य भगवान के गुरु को गाते रहता हूं। जब मैं उनकी लीलाओं को गाता हूं, तो वो जो तीर्थपाद भगवान है, जिसकी चरणों में सारे तीर्थ है, वो भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान 24 घंटे हमेशा उनके हृदय में निवास करते हैं और जिस लीला का स्मरण करना है तो मुझे सारी लीलाएं दिखती रहती है। नारद कभी भी एक क्षण के लिए नारद भगवान को नहीं छोड़ते और भगवान उनके हृदय में सदैव निवास करते हैं, इसलिए भगवान भी उनको नहीं छोड़ते। नारद जी कहते हैं कि जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामनाओं से आतुर हो रहा ना, उन लोगों को भगवान के गुणों का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान की लीला को गाना चाहिए। इससे बड़ी महाऔषधि और इसकी कुछ नहीं है। जो सांसारिक कामना है, सांसारिक भोग है, इसमें जीव आसक्त है, छूट नहीं पा रहा है, उनको उनके लिए उपाय दिया गया है कि भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए, भगवान के गुण रूप लीला आदि का वर्णन भक्तों के बीच में करना चाहिए। इससे सारा उनका जो संसार बंधन है, संसार के प्रति जो संसारिक भौतिक संसार में जो आसक्ति वो खत्म हो जाएगी। फिर वो कहता है कि काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ, बार बार घायल होता है। इस संसार में कई सारे कामनाएं होती है, कई सारी इच्छाएं होती है, जिसकी जीव पूर्तता नहीं कर सकता है, और पूर्ण नहीं होने के कारण, उसकी अतृप्त इच्छा के कारण जीव अंदर हृदय से दग्ध रहता है, पीड़ित रहता है, और कामनाओं के कारण उसको ये करना है, वो करना है, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, इस तरह से उसकी लालसा तृष्णा बढ़ती रहती है। वो प्राप्त तो नहीं कर पाता उस वस्तु को, लेकिन उसके पीछे पागल होता है। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा करने से जो शांति प्राप्त होती है, योग मार्ग विधि से या कोई भी विधि से वो शांति नहीं मिल सकती। जो शांति भगवान के अर्चन विग्रह की सेवा करने से मिलती है, भगवान की सेवा करने से मिलती है। तो नारद जी कहते हैं कि आप भगवान की सब लोग सेवा कीजिए। यदि आपका हृदय संसार के रोगों से ग्रसित है तो भगवान की सेवा कीजिए। व्यास जी आप निष्पाप है, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया, मेरे जन्म, मेरी साधना का रहस्य, और आपकी क्या स्थिति है, और आप जो असंतुष्ट थे आपके संतुष्टि के लिए मैंने उपाय बता दिया कि श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। तो मेरे व्यास जी अब सारे अब तक जो आपने गलतियां की उसको आप भूल जाइए, आप भगवान के अवतार है, आप समाधि अवस्था में भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण कीजिए। मेरी कृपा से आपको सारी श्रीमद् भागवत में जो जो आपको करना है वो सारी लीला है आपको भगवान के सामने, आपको आपके आंखों के सामने, आपके हृदय में प्रकट रहेंगी, आपको बस उसको लिखना है। तो श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी के माध्यम से प्रकट हुआ है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वेद व्यास जी ने उसको लिखा हुआ है, ना, श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रकट होता है, अवतारित होता है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी को या नंद यशोदा को माता पिता बनाकर इस संसार में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, उसी तरह से वेद व्यास जी को अपना माता पिता बनाकर श्रीमद् भागवत इस संसार में अवतरित होता है। श्रीमद् भागवत ये भगवान का अवतार है, श्रीमद् भागवत ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साधारण साहित्य नहीं है, श्रीमद् भागवत ये दिव्य अलौकिक, और हर एक भागवत के हर एक श्लोक में, हर एक अक्षर में साक्षात श्री कृष्ण है। सूजी कहते हैं कि इस तरह से देवर्षि नारद ने भगवान के गुणों को गान किया, अपने बारे में बताया, और वेदव्यास से कहा कि प्रभु अब मैं चलना चाहता हूं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो नारद जी ने वेदव्यास से आज्ञा ली और अपने दिव्य वीणा पर भगवान के गुणों का गान करते हुए वेद नारद जी वहां से चले गए। तो सूची कहते हैं अहो ये देवर्षि नारद कितना धन्य है, क्योंकि ये सांग्रपाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंदमग्न होते ही है, साथ साथ सारे संसार को आनंदित करते रहते हैं। तो इस तरह से नारद जी ने वेदव्यास जी को श्रीमद् भागवत को प्रकट करने के लिए विनती की, रिक्वेस्ट किया। उसके बाद वेदव्यास जी ने नारद जी के आदेशानुसार श्रीमद् भागवत की रचना की। लेकिन श्रीमद् भागवत शुकदेव गोस्वामी जब प्रकट शुकदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ तो 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे थे, 16 वर्ष तक बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। वे सोच रहे थे अगर बाहर निकलूंगा तो भगवान की माया जो है वो पकड़ लेगी, इसलिए शुकदेव गोस्वामी 16 वर्ष तक विश्वास करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन 16 वर्ष तक हम अपनी माँ के गोद में रहे, माँ के कोख में ही रहे। तो वेदव्यास ने भगवान को बुलाया, जरा इनसे कहिए बाहर आने के लिए। तो भगवान आके आश्वासन देते हैं कि चिंता मत कीजिए सुखदेव गोस्वामी, आप बाहर आइए, मेरी माया आपको स्पर्श भी नहीं करेगी। ऐसे सुखदेव गोस्वामी बाहर आकर सीधा वन की तरफ निकल जाते हैं और उसकी पिताजी पीछे 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 दौड़ते रहते हैं। बेटा तुझे तुझे पाने के लिए मैंने प्रार्थना की थी भगवान से। वेदव्यास जी ने अपने चार वेद है उनको सौंप दिया, चार शिष्यों को, रोमहर्षण जी को इतिहास और पुराण सौंप दिए, लेकिन भागवत पुराण किसको देंगे इस पर विचार करने लग गए। उनको कोई भी ऐसा क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं दिख रहा था जो भागवत का प्रचार कर सके। तो अंततः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके ऐसे किसी फरीकर को भेजिए जिससे भागवत का प्रचार हो सके। और सुखदेव गोस्वामी आए और सुखदेव गोस्वामी आए और चले गए और वेदव्यास पीछे पीछे दौड़ रहे। दौड़ते 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 वेदव्यास जंगल में, वो सुखदेव गोस्वामी जंगल में जा रहे हैं और वेदव्यास उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन बोल रहे बेटा भागवत पढ़ना है। वो तो सुनिए है। उसके बाद वेदव्यास जी एक उपाय रचते हैं, वे जाते हैं और अपने दो शिष्यों को बोलते हैं ये दो श्लोक सुनो। दो श्लोक बताते हैं अहो वकीयम स्तनक आलकूटम और वरहा पीडम नटवरोप। ये दो श्लोक वेदव्यास जी अपने शिष्यों को देते और कहते हैं जाओ से जंगल में गाओ। और इसको गाते हैं, गाते गाते सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मानंद में रहते हैं, वो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत की इन दो श्लोकों को सुनकर विस्मित हो जाते हैं। ब्रह्मानंद से चुप ब्रह्मानंद से वो ब्रह्मानंद में रहते हैं, संपूर्ण इतना आनंद रहता है कि तुच्छ आनंद नहीं है। वो ब्रह्मानंद का आनंद बहुत दिव्य आनंद है। वे वो ब्रह्मानंद में सुखदेव गोस्वामी थे, वे भगवान की लीला से आकर्षित हो गए और उन्होंने निर्णय किया कि चलो ये है क्या है, देखना चाहिए ये लड़का कौन है जिसके बारे में ऐसी चर्चा की जा रही है। और वो लौट पड़े और अपने पिता के चरणों में गिर पड़े, कहा कि मुझे ये जो दो श्लोक है इसी के बारे में विस्तार में बताओ। तब वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत सुनाया और वही श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी ने आगे जाकर महाराज परीक्षित को दिया। और जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित भागवत सुना रहे थे ना, उस समय उन्होंने विशेष कृपा करके सूत गोस्वामी को बुला लिया था। भागवत में वर्णन है कि सूत गोस्वामी को महाराज परीक्षित के बाजू में बैठ के बिठाया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि सूत गोस्वामी आगे जाकर नैमिषारण्य में जाकर भागवत कथा करेंगे, इसी घटना को रिपीट करेंगे, इसी चर्चा को। इसलिए सूत गोस्वामी को बिठाकर उन्होंने विशेष स्थान दिया था महाराज परीक्षित के बाजू में। एक और रहस्य की बात थी कि नारद जी आने से पहले वेदव्यास ने भागवत की रचना कर दी थी। अरे जी हाँ, संक्षिप्त जब पुराणों की रचना की थी तो 18 पुराण है, 18 पुराण भागवत है। वेदव्यास जी ने जीव गोस्वामी षट संदर्भ में लिखते हैं, बात मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं। जीव गोस्वामी षट संदर्भ में बात कहते हैं कि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना पहले ही कर दी थी संक्षिप्त में थोड़े इसमें, लेकिन जिस तरह से न्याय उसको देना चाहिए था वो न्याय उन्होंने दिया नहीं था। कि नारद जी के आने के बाद नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत उनसे कहा, उसके बाद उन्होंने उसी ग्रंथ को रिवाइज एडिशन निकाला। रिवाइज एडिशन मतलब उसको विस्तार किया उसका। और फिर से नारद जी के आने के बाद उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के लिए रिवाइज एडिशन दिया श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत भगवान का अर्चा विग्रह, ये नाम जप, इस तरह से ये भगवान द्वारा ये व्यवस्था है हम लोगों की सहायता करने के लिए। एक साधारण भक्त जीव जो इस संसार में पड़ा हुआ है उसकी सहायता करने हेतु भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में प्रेजेंट है, भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रेजेंट है, भगवान साधु के रूप में प्रेजेंट है, भगवान नाम के रूप में प्रेजेंट है। ये सब किसके लिए? केवल एक ही कार्य के लिए। भगवान चाहते हैं कि हम लोग उनकी अच्छे से भक्ति करें, उनसे संबंध स्थापित करें और उनके धाम में चले जाएं। बस इसी के लिए भगवान ये सारा चीज करते हैं, भगवान ये सारा कार्य करते हैं। हम लोगों का कर्तव्य बनता है, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है कि भारत भूमि में मनुष्य जन्म हजार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हम लोग भारत भूमि भारत वर्ष में जो जिन लोगों का जन्म हुआ है उनको भागवत को अपना जीवन बनाना चाहिए और भागवत का प्रचार करना चाहिए। इससे संसार का उद्धार होगा, अपना भी उद्धार हो जाएगा। भगवान के गुणों को गाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और हमारे हृदय में प्रकट रहेंगे हमेशा, और भगवान के गुणों को दूसरों को सुनाने से वो भी कृष्ण से जुड़ जाएंगे। अगर हमारे इंद्रियों में बल है तो उससे भगवान के गुणों को सुनिए, अध्ययन कीजिए, प्रचार कीजिए और कुछ नहीं करना है। हर एक भक्त को भागवत का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये भागवत ना ये उच्च कोटि के लोगों के लिए है, ये भागवत हम सब के लिए है। भागवत जिस तरह से हम लोग भोजन करते हैं ना, उसी तरह से भागवत को अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए। क्योंकि भागवत आत्मा का भोजन है। जब तक आपको भोजन भागवत नहीं पढ़ेंगे तब तक आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, इसलिए भागवत को रोज पढ़ना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो रहा है, एक घंटे से जब से कीर्तन चालू हो रहा है तभी से बहुत पूरे सिर में पेन हो रहा है, तो क्षमा कीजिए मैं ठीक से प्रवचन नहीं कर पाया। इन चार सेशंस में भगवान के अच्छे अच्छी चीज़ों के बारे में जो आपने सुना उसको ग्रहण कीजिए, और जो गलतियाँ मुझसे हुई है उसको आप मेरे पास ही छोड़ दीजिए। बस आपसे इतनी विनंती है कि श्रीमद् भागवत को अपना जीवन बना लीजिए, इसी से आपका उद्धार हो सकता है। और भगवान से दो प्रार्थनाएं अवश्य करनी चाहिए। एक प्रार्थना ये है कि उनके चरण कमलों में प्रेम उदित हो, और दूसरे उनके शुद्ध भक्तों की संगति हमेशा प्राप्त हो। क्योंकि भागवत में जितने सारे भक्त हैं और जितने सारे चरित्र रखे गए हैं, उन सारे चरित्रों में जो भक्त है वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि मुझे साधु संग मिले, साधु संग मिले, आपके शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो। तो सार उसका यही कि हम लोग भी यही करें। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
धन्यवाद प्रभु जी की तबीयत नाजुक होने के बावजूद भी हमें इन सत्र को पूर्ण किया और अच्छी तरह से हमें समझाया। हमें विशेष प्रभु जी बोल रहे हैं कि अच्छी लगे वो आप ले लीजिए और पूरी जो है वो मुझे दे दीजिए। परंतु